शांति, ओम शांति। शिव बाबा आकर इस समय इस संगम युग पर हम बच्चों को नजर से निहाल करते हैं, इसलिए ग्रंथ में गायन है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। स्वामी सतगुरु माना परमात्मा, वो आकर के नजर से निहाल करते हैं। इसका अर्थ क्या है? ये नजर नहीं, ऐसे नहीं दृष्टि दी और निहाल हो गए, लेकिन कौन सी नजर? बाबा कहे ये तीसरा नेत्र। बाबा आकर हमें तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, जिस नेत्र से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो निहाल माना इतना उधार कर लेते हैं जो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर। आज सारी मुरली इसी पर है। तो निहाल कौन करते हैं और बेहाल कौन करते हैं? तो माया रावण बेहाल करता है और बाप निहाल करता है। और जब बेहाल हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? एकदम कंगाल। निहाल होते हैं तो एकदम सिरताज। तो आज बाबा की सारी मुरली इसी पर है, और भी कई राज बाबा ने समझाए हैं, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। तो कैसे निहाल होते हैं? बाबा ने कई रूप बताए हैं। आज 5/4/2024 है। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाबा को प्यार से याद करने से ही आत्मा निहाल हो जाएगी। अर्थात नजर से निहाल अर्थात विश्व का मालिक बनना। बाबा को याद करो, नजर से निहाल हो जाएंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सतगुरु तो एक परमात्मा ही है ना, तो सतगुरु ही हमको नजर से निहाल कर सकता है, वही ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान कर सकता है, क्योंकि वही सत्य है, वही सत्य सुनाता है। तो नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है, अर्थात जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है। आत्मा को तीसरी आंख मिली, उससे बाप को पहचान लिया, तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। निहाल होना माना सदगति मिलना, विश्व का मालिक बनना, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ। मेरे से नजर लगाओ माना मुझे याद करो, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो। तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। बेहाल से निहाल कैसे बन जाएंगे? जब मेरे से नजर लगाओ अर्थात मुझे याद करो, और मुझे याद करो माना और संग तोड़ो, एक संग जोड़ो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं आते हो मधुबन में आते हो किसके पास आते हो रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये भी जानते हैं शिव बाबा कौन है। शिव बाबा हम शिव बाबा के पास जाते हैं, लेकिन कौन है शिव बाबा? वो हम सब आत्माओं का बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए, बाप है ये तो निश्चय चाहिए, साथ साथ ये निश्चय चाहिए कि वो सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। अब परम का तो वैसे अर्थ कहेंगे ऊंचे से ऊंचा, परम धाम का निवासी, परम पिता, हाँ। लेकिन आज बाबा ने और एडिशन किए, सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है, नजर से नजर मिलाते हैं बाबा। गायन है नजर से निहाल कीना स्वामी सतगुरु, उसका अर्थ चाहिए। अब नजर से निहाल किसको, किसको नजर से निहाल? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, सारी दुनिया को नजर से निहाल करते हैं, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी, कौन सी नजर, किसको नजर और फिर कौन सी नजर? क्या ये आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, उस नजर से आत्मा निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति को पाती है, विश्व का मालिक बन जाती है। तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है कि ये हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो, राय देते हैं केवल या फरमान करते हैं? राय तो हल्की चीज होती है ना, लेकिन पहले तो राय देते हैं, क्योंकि मन तो भटकता ही रहता है, तो राय देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। फिर बाबा धीरे धीरे आज्ञा करते हैं, फिर बाबा फरमान भी करते हैं, क्योंकि फरमान करना माना और किसको याद किया तो सजाओं के भागी बनेंगे, तो इसलिए पहले राय देते हैं। तो बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो, बाप आत्माओं को समझाते हैं, राय देना माना समझाते हैं। आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी है। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म है, ये नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर, हाँ, लाखों साल थोड़ी कोई नाटक चलता है, पूरा भी होना चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है, हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, फिर नई सो पुरानी बनती है। नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग और पुरानी दुनिया का नाम है कलयुग। तो बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए, अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। तो बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो, हाँ मैं कौन, मुझे याद करो, तो मैं कौन हूँ, मैं जिसको तुम्हें याद करना है, मैं कौन? परम पिता परमात्मा, खुद कहते हैं मुझे याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन, तुम मेरे में नजर लगाओ, तीसरे नेत्र से मुझे देखो, तो इसको कहेंगे मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बाबा की याद में कोई तकलीफ नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी आत्माएं, जो सोचो तो से कितनी छोटी, कितनी सूक्ष्म। जब यहां आते हैं, आत्मा जब यहां आती है तो 84 जन्मों का पाठ बजाती है, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है, दम ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है, दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, क्या है, कंगाल, बेहाल हो गई है। तो बेहाल को, कंगाल को, दम नहीं आत्मा में। फिर निहाल कैसे बने, ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। हाँ, निहाल बेहाल ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, जिस पर बाप समझाते हैं, वेद शास्त्र चित्रों पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्री मत पर बनाए हैं, त्रिमूर्ति गोला झाड़, बाबा कहते हैं ये चित्र तुमने श्री मत पर बनाए हैं। आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए, भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहां तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवानुवाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। अब भगवानुवाच है, भगवान बोलते हैं माना ज्ञान देते हैं, तो उनका दिया हुआ ज्ञान है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहां तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जो आज तक कभी नहीं पढ़ी, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है, अगर फर्क निकाले ना तो कितना फर्क है इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में, दुनिया में जो पढ़ाते हैं। वो पढ़ाई तो पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, द्वापर युग से सत्युग त्रेता में भी पढ़ाई है, लेकिन वो तो अलग ही प्रकार की पढ़ाई होगी ना। द्वापर से चलो धीरे धीरे दुनिया की थोड़ी पढ़ाई मिलती गई, कलयुग में तो क्या पढ़ाई है, इतनी भारी पढ़ाई होती है, इतनी माना कोई समझे कोई ना भी समझे, लेकिन वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, कलयुगांत आ जाता है। और इस पढ़ाई में दिन में चले जाते हो, बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते उसमें उससे दिल में दिन में चले जाते हो और उस पढ़ाई से रात में चले आते हो। वो पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। उस पढ़ाई में आत्मा को धारणा हो तब वो पढ़ाई बुद्धि में बैठे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पढ़ाई के लिए आत्मा को धारणा चाहिए, पवित्रता की धारणा चाहिए, तब पढ़ाई ये बुद्धि में बैठेगी। तो बाबा कहे इस पढ़ाई में तो जब आत्मा पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब क्या बन रहे हैं, सोने के बर्तन बन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं, सब सोने का बर्तन बन रहे हैं। बुद्धि सोने की हो जाती है तो ज्ञान इसमें ठहरता है, होंगे तो मनुष्य ही, हाँ मनुष्य ही सोने का बर्तन होंगे, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है, 9 कैरेट माना मुलमा, नाम मात्र सोना, बाकी तो लोहा तांबा चांदी या जो भी। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वो अब बुझ गई है, ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। जिनकी ज्योति जगी हुई है और जिनकी ज्योति बुझी हुई है, दोनों में बड़ा फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, ये बाप ही समझाते हैं। बुझ गई ज्योति फिर कैसे जगी, वो बाप ही समझाते हैं। और पद पाया जगी जब जब ज्योति, बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। मिठरा घुर तघुरे, आप प्यार करो तो मैं भी प्यार करूं, आप याद करो तो मैं भी याद करूं। तो बाबा कहते तुम मुझे अच्छी तरह याद करेंगे तो मैं भी तुमको अच्छी तरह याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है, वही सच्चा स्वामी सतगुरु जो नजर से निहाल करता है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, अब परवाने, पहले ज्योति अभी परवाने, तुम सब परवाने हो। उनको क्षमा कहते हैं शिव बाबा को। कोई परवाने तो सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। पहचान लिया शिव बाबा को तो फिदा हो जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, चक्कर लगाया चले गए, घूम फिर करके फिर आए, फिर चक्कर लगाया फिर चले गए, ऐसे भी है, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। तीन प्रकार के बाबा बताते ना, अब ये चौथा प्रकार का भी ऐड हुआ परवाना। एक तो दूर से ही भाग जाते हैं, ये बहुत गर्मी लगती है तो नजर से तो आते ही नहीं नजदीक क्षमा के। दूसरे हैं आते हैं और चक्कर लगाकर चले जाते हैं, एक बार आए चक्कर लगा चले गए। तीसरे एकदम फिदा हो जाते हैं, पर चौथे कौन से आते हैं, चक्कर लगाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर दुनिया का चक्कर लगाते हैं फिर आते हैं, फिर यहाँ चक्कर लगाते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं, बार बार नहीं आते हैं वर्षा देने के लिए, एक ही बार आते हैं वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे, हद का बाप तो हद का देंगे, बेहद का बाप थोड़ी हद का देंगे, वो तो बेहद का देंगे। गायन भी है, बेहद का वर्षा क्या है, गायन भी है। 21 पीढ़ी का गायन है, फुल आयु है नहीं, बचपन में बच्चा पैदा हुआ मर गया, वो तो जन्म तो हुआ और मर भी गया, तो वो पीढ़ी नहीं गिनी जाएगी। पीढ़ी माना पूरी आयु, तो 21 पीढ़ी का गायन है। ये वर्षा बाबा देते हैं। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं, लौकिक बाप वैसे दिखाई तो ऐसे देगा ना, लौकिक बाप देते हैं। बाप राजा है तो बच्चे को राजाई दी, तो जैसे बाप ने उसको वर्षा दिया, लेकिन बाबा कहते नहीं। हाँ देव बाबा कहते हैं सतयुग में वर्षा कौन देते हैं, भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। वो दिखाई देता है कि भाई लौकिक ने दिया, लेकिन है इस समय का वर्षा। भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको करते हैं, वो बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, लौकिक में भी कईयों को स्वामी कहते हैं सतगुरु कहते हैं, कहते होंगे, परंतु सत तो एक ही बाप है, सतगुरु तो सचमुच एक ही है। भले कहते होंगे अनेकों को सतगुरु, पर सतगुरु तो एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ, वही सत्य बताते हैं, वही एक है, सत्य है, सत्य हमेशा एक होता है। तो ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वो ट्रुथ क्या आकर करते हैं, भगवान सत्य है तो वो सत्य भगवान क्या आकर करते हैं, वही पुरानी दुनिया को सच खंड बना देते हैं। सत्य बाप पुरानी झूठी दुनिया को फिर सच खंड बना देते हैं। सच खंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सब सच खंड के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सच खंड था तो और सब खंड नहीं थे, सब एक ही था, सच खंड ही था, सत्ययुग था, भारत था, तो और कोई खंड नहीं थे। ये सब पीछे आते हैं, दूसरे खंड। सच खंड का किसको भी पता नहीं, बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है। हाँ, कहेंगे ना अमेरिका, ये कैसे यूरोप, ये सब खंड बताते हैं, तो अनेक खंड है। तो बाबा कहते हैं उनका तो सबको मालूम है, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, सब अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस समय संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, ऐसे नहीं मानते हैं, कहते हैं लौकिक ब्राह्मण, क्या कहते हैं लौकिक ब्राह्मण, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। लौकिक ब्राह्मण यही कहते हैं, हम ब्रह्मा की औलाद हैं। परंतु वो है कुख वंशावली, जो भी औलाद है भले ब्राह्मण कहलाते हैं ब्रह्मा की वंशावली, लेकिन है तो कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली, वो है अपवित्र और तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तो मुख वंशावली बन, अभी मुख वंशावली बन, फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। मुख वंशावली बनते हैं, फिर बाबा के साथ इस छीछी दुनिया से चले जाते हैं। वहां तो रावण राज्य होता नहीं, अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया को। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है, ऐसे नहीं दो दुनिया ही अलग अलग, नहीं, वो वर्ल्ड ही एक ही दुनिया है, जो नई होती है फिर पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है और किसी की बुद्धि में नहीं है कि ये यही दुनिया नई है, फिर पुरानी बनती है, फिर नई बनती है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी न सके, ये तो थोड़े समय की बात है, केवल 5000 साल। कहाँ 5000 साल और कहाँ लाखों साल, तो लाखों साल में फिर आधा आधा भी कैसे करें। ये तो थोड़े समय की बात है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ, कब आता है बाप, जब खास भारत में धर्म ग्लानी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भर भवति भारत, खास भारत में धर्म ग्लानी होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, तो बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। सबकी आत्मा साइज में एक जैसी है, चाहे वो पाप आत्मा की आत्मा हो या महात्मा की हो, देवात्मा की हो या परमात्मा की हो, आत्मा की साइज वही है। आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है, वो है सुप्रीम आत्मा। तो सुप्रीम माना परम, परम का अर्थ है ऊंचे से ऊंचा, और साथ में बाबा ने कहा है सुप्रीम माना, बाबा और अर्थ बताते हैं, सुप्रीम माना वो सदैव पवित्र और निर्विकारी है, इसलिए सुप्रीम है। ऊंचे से ऊंचा तो है ही है, लेकिन वो सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी देवताओं को। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है, पुरानी होती जाती है, कला कम होती जाती है। दो कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है और खंड माना और धर्म, क्योंकि और खंडों में और धर्म है। तो बाबा कहते उनको कहा जाता है बाई प्लॉट्स। बाई प्लॉट्स माना एक बड़ी कहानी होती है शुरू से अंत तक हीरो हीरोइन की कहानी, लेकिन फिर और छोटी छोटी कहानियां भी होती है औरों की, तो वो बाई प्लॉट हो जाते हैं। उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप कैसे हो जाते हैं? अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बाई प्लॉट्स फिर वो मेन धर्म वाले फिर कैसे और धर्मों में चले जाते हैं, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वो फिर रिपीट होगा, कुछ भी नया नहीं है, फिर रिपीट होगा। जैसे बोधियों का कोई बड़ा आया, उस समय कोई आया होगा, बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, कितने बोधी बन गए, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, केवल हिंदू ही धर्म बदलते हैं ना, और कोई धर्म वाले ऐसे नहीं बदलते, पर हिंदुओं ने अपना धर्म बदला। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि क्यों बदला, और धर्म वाले नहीं बदलते, परंतु दिखाते ना अशोका आया और कलिंगा वो युद्ध हुआ, तो वहां उसके बाद इतनी मौत हुई जो उसको वैराग आ गया और फिर धर्म ही बदली कर दिया, वो बौद्धी बन गया। तो अपना धर्म आप ही बदलाए, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी बन पड़े। पहले कर्म भ्रष्ट हुए फिर धर्म भ्रष्ट। अब कर्म भ्रष्ट कैसे? देह अभिमान में आए, विकारों के वश हुए, तो देवता धर्म ही खत्म हो गया। फिर हिंदू कहलाने लगे, फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, तो धर्म भ्रष्ट भी हो गए, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े है। वाम मार्ग में चले गए, तो वाम मार्ग माना विकृति का मार्ग, विकारों में जाने का मार्ग, तो वाम मार्ग में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे। हाँ, जगन्नाथ के मंदिर में भी है ना, अभी तो नहीं है, पहले बहुत गंदे गंदे चित्र थे बाहर, मंदिर के बाहर बहुत गंदे चित्र, अश्लील चित्र, तो जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता कि ऐसे अश्लील चित्र देवताओं के क्यों दिए हैं। खुद विकारी है तो उनको भी विकारी दिखा दिया है। ये नहीं समझते, क्या नहीं समझते, कि ये देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने हैं विकारी, तब ऐसे बने हैं, उस समय के ही ये चित्र है, वाम मार्ग के चित्र है। द्वापर युग के बाद ये सब चित्र बने हैं। सत्युग त्रेता में तो देवताएं तो पावन निर्विकारी थे। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है, कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, हिंदुस्तान शब्द गीता में है ही नहीं, भारत भारत ही है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, ये तो भारत हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। हाँ, ये भारत हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं, मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, पर्शियन शब्द है ना, स को ह कर दिया। वास्तव में सिंधु नदी के किनारे बसते थे, तो सिंधु शब्द से हिंदू शब्द आ गया, और हिंदू शब्द हुआ माना वो हिंदुओं का स्थान बन गया है सिंधु नगरी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है। ये भी ड्रामा में नोंद है, अच्छी रीति समझना चाहिए, ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, फिर उनों के आगे जाकर कहते हैं, खुद ही भ्रष्टाचारी बने, फिर जो शिष्टाचारी है, देवताएं हैं, निर्विकारी है, उनके आगे खुद ही कहते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी पापी हैं, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे, और कोई धर्म वाले ऐसे नहीं कहते हैं। हाँ, भले घर धर्म में भी सेंट्स है, क्रिश्चियन धर्म में भी कितने सेंट्स दिखाए, लेकिन कोई भी क्रिश्चियन ऐसे नहीं कहता है आप पावन हो और मैं पतित हूं, बस हमारे सेंट्स है, हमारे बड़े हैं बस। लेकिन ये भारत में तो कहते आप पावन हो हम पतित है, आप भी हम पर तरस खाओ, तो हम पतित है तो पावन थे, पतित बने तभी तो तरस खाओ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। और धर्मों में सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी और हम विकारी। नानक गुरु नानक तो ये लोगों ने कहा ना, गुरु नानक ने खुद को कभी गुरु नहीं कहा। नानक नीच सदा कहे विचार, नानक दास, गुरु शब्द अपने लिए कभी नहीं यूज किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कभी ऐसे नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी और हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, पांच क बताते हैं ना, तो नानक पंथी कंगन लगाते हैं, कंगन पहनते हैं, वो है निर्विकारी पने की निशानी। परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते, ये सब जो भी पांच क बताते हैं ये सब पवित्रता की निशानियां हैं। परंतु बाबा कहते हैं विकार बिगर तो रह नहीं सके रख सकते, झूठी निशानियां रख दिए। जैसे हिंदू लोगों ने भी कौन सी झूठी निशानी रखती है, जनेऊ पहनते हैं, भाई ब्राह्मण है तो जनेऊ पहनते हैं, परंतु पवित्र तो रहते नहीं है। जनेऊ तो पवित्रता की निशानी है, पवित्रता की निशानी है जनेऊ। झूठी आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते, इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है, सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई भी हो न सके, कोई भी नहीं, भले पवित्र कोई रहते होंगे लेकिन शरीर तो विकार की रचना है। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके, प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना बाप ही करते हैं। निवृत्ति मार्ग शंकराचार्य ने किया, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग और उसमें पवित्रता बाबा कहते हैं वो बाप ही स्थापन करते हैं। बाकी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग तो द्वापर युग से चलता आता है, बाकी सब गुरु है निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उनों का जोर जास्ती हो गया है। हाँ, प्रवृत्ति अपवित्र प्रवृत्ति वालों का जोर जास्ती हो गया है। तो बाबा कहे, बाप कहते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूं। मैं कैसे मिलता हूं? बाबा कहे मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूं, इन सब से मैं नहीं मिलता हूं, उनसे मैं नहीं मिलता हूं। मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर देता हूं। गायन भी है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। यहां तुम क्यों आए हो, क्यों आए हो? नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, तो यहां क्यों आए हो? निहाल बनने, बाबा से नजर तीसरा नेत्र लेकर निहाल बनने आए हो, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे, ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं, ऐसे कोई कभी कहेंगे नहीं कि बाप से बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे या विश्व का मालिक बन जाएंगे, और कोई कह न सके। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम ये बन जाएंगे, बाप ही कहते हैं तुमको ये बनना है, विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण ये बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को भी मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं, यही 84 जन्म ले हाँ यही लक्ष्मी नारायण की आत्माएं 84 जन्म ले पतित बने फिर तुमको ये बनाने आया हूं। बाप हमको फिर से ये लक्ष्मी नारायण बनाने आया है। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? हाँ ये किसके लिए कहते हैं कि वो नजर से निहाल करते हैं, अपना परिचय देते हैं? ये एक सतगुरु के लिए, वही अपना परिचय देता है और नजर से निहाल करता है। वो गुरु लोग तो ढेर के ढेर है और माताएं अबलाई हैं भोली, वो ढेर के ढेर गुरुओं के पास जाते हैं, वो माताएं अबलाई हैं भोली। अब तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो, बाबा भी भोलानाथ और बाबा के बच्चे भोले। शंकर के लिए कहा जाता है आंख खोली और विनाश हो गया, ये भी पाप हो जाए। कोई सामने आए और मैं उस समय मेरी आंखें बंद हो और वो सामने आए और मैं उसको देखूं और वो भस्म हो जाए, मर जाए, जल जाए, तो बाबा कहते ये तो पाप है। शंकर के लिए कहा जाता है आंख खोली विनाश हो गया, ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं, भगवान कभी ऐसे विनाश नहीं करता, इस प्रकार आंख खोले और सब भस्म हो जाए, विनाश हो जाए। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना, कैसे होगा विनाश? शंकर की आंख खोलने से थोड़ी विनाश होता है। कैसे होता है विनाश? अणु युद्ध से, ग्रह युद्ध से, प्राकृतिक आपदाओं से, इनसे विनाश होता है। ऐसा नहीं कि आंख खोली और विनाश हुआ, विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते हैं। कश्यप बाबा ने शंकर को डायरेक्शन दिया आंख खोलो और भस्म कर दो, विनाश कर दो। ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं, विनाश के साधन विज्ञान द्वारा ही निकल रहे हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं, वो भी बंधे हुए बांधे हुए ड्रामा के अंदर विनाश के लिए तैयारी करना, छोड़ नहीं सकते, इसलिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। नाम कितना होता है, जो ज्यादा हथियार बनाते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं, उनका नाम भी कितना होता है। मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं, उसके लिए भी कितना नाम होता, अरे फला ये मून में गए, कुछ फायदा नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्माएं अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं। बाबा को याद करना माना बाबा के लिए सर्विस करना, या जो भी हम पवित्र बनते बाबा के, बाबा हमें कहते हैं, है तो हमारे लिए लेकिन ये बाबा हमें कहते हैं, तो मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। हम बाबा को याद करते हैं, बाबा हमको याद करता है तो उनसे बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। बस एक ही बात, नजर से निहाल होंगे तो राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ू, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं, बाबा को घड़ी घड़ी कहना पड़ता ना, बाप कहते हैं, नहीं तो बच्चे भूल जाते ये कौन कह रहा है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। अब ये किसको कहा हे पतित पावन? पतित पावन किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? किसको कहा पतित पावन? नहीं, हाँ ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को पतित पावन नहीं कहा। पतित पावन तो एक है, वो सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को तो जानते हैं। और जो भी है वो शास्त्रों को तो सब जानते हैं। वो सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर फिर टाइटल भी लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है। कौन सा है बाप का टाइटल? बाबा को शास्त्र वास्तव पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाप को पहले से टाइटल मिला है। वो तो पढ़ते हैं, रटते हैं, ये बाय हार्ट करते हैं, फिर बड़े बड़े टाइटल लेते हैं। लेकिन बाबा को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको पहले से टाइटल मिला हुआ है। कौन सा टाइटल? ज्ञान का सागर। वो तो सागर है ना ज्ञान का, तो सब कुछ उनको पता है, सारे वेदों शास्त्रों का सार वो सब जानते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले से टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ी लेना है। वो सन्यासियों को तो पढ़ करके टाइटल लेना है, शिव बाबा को कोई शास्त्र पढ़कर टाइटल नहीं लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। कौन सा परवाना बनना है? फेरी लगाने वाला नहीं या दूर से भागने वाला नहीं, लेकिन क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है, सोने का बर्तन बनाना है। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, महसूसता की बात चल रही है ना, तो ये वरदान में फिर है, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। अब दिल से महसूसता, एक तो अपनी कमजोरियां वो महसूस करनी है, आज बाबा और ऐड कर रहे हैं, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए, दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए स्वयं को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। एक तो अपनी कमजोरी की महसूसता, ये पता होगा, हमें मालूम है मेरी कमजोरी क्या है, महसूस पता है, तो फिर बदलना है। और दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता, वो क्या चाहते हैं, मैं जो चाहता हूँ वही नहीं, वो क्या चाहते हैं, उनकी भी महसूसता होना। जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, अब कोई परिस्थिति आई वो पेपर है, तो परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता, ये भी महसूसता कि मुझे आप पास होना है, श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता, कि स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो, कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। कोई अगर परिस्थिति आई तो अपनी स्वस्थिति को क्यों बदलना है, वो परिस्थिति तो पेपर है, स्वस्थिति तो हमारी अपनी ऊंची स्थिति है, वो परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी, और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी, क्योंकि सच्चे दिल से महसूस किया तो परिवर्तन होंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वो है, किसको बाबा वारिस कहते हैं, वारिस वो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। जी हजूर हाजिर, हाँ हजूर शिव बाबा मैं हाजिर हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, वो वारिस है। वारिस वो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है कहता है। हाँ जी हजूर बाबा हजूर, नेपाल में हजूर हजूर ये शब्द बहुत कॉमन है। हाँ हजूर, तो बाबा भी कहते हैं जो जी हजूर हाजिर हूँ ये बाबा कहे वही वारिस बच्चा है। अब संस्कार मिलन की रास करने लिए आज का बाबा का अव्यक्त इशारा क्या है, आज 5 तारीख है। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। केवल गले मिलने की बात नहीं है, संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। संस्कार को जान लिया फिर उनसे मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव वाले बनो। मिक्स होना है, संस्कार का मेल करना है तो सरल स्वभाव वाला बनो। हाँ ऐसे नहीं रिजिड कठोर एकदम अकड़ा हुआ, तो बाबा कहते संस्कार नहीं मिल सकेंगे, तो सरल स्वभाव वाले बनो। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज से बड़ी मीटिंग चालू हो रही है, अच्छा ये पर ये कहाँ दिखाई जाएगी,
ये मानपुर के पास।
हाँ
मानपुर है ना,
मानपुर के पास। आप अनाउंस करो, एक अनाउंसमेंट सुन के जाएंगे, बाकी तो आज, तो आज से बड़ी मीटिंग शुरू हो रही है, काफी सारे प्लान्स बन रहे हैं और सारे साल के लिए बहुत सुंदर सुंदर योजनाएं बनी हैं।
ओम शांति। कल आप सभी को शशि बहन जी ने अनाउंस करके बताया ही था कि मानपुर के पास में एक टाउनशिप में जो थिएटर बना हुआ है वहाँ सभी को द लाइट फिल्म दिखाई जाएगी, और सभी को व्हाट्सएप पे तो आया ही होगा, उसमें 3 टाइमिंग्स बताए गए थे, तो किसी कारणों से सुबह और शाम दो ही समय फिल्म दिखाई जाएगी, ये सभी के ध्यान पर रहे। कईयों ने ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना एप्लीकेशन सबमिट किया होगा, तो 5, 6 और 7 ये सुबह और शाम 2 टाइम दिखाया जाएगा, और शाम का जो टाइम था वो 5 से 6:30 था, वो 6:30 बजे स्टार्ट होने का टाइम है, तो ये भी आपके ध्यान पर रहे। ये थोड़े चेंजेस हो गए हैं किसी कारणों से, तो आप सही समय पर जाए और उसका आनंद ले। ओम शांति।